सूरत नूर। ब्राह राज सूरत की आयतों पे जाने से पहले कुछ चीज़ें जो इंशाल्लाह इस पूरी सूरत को और इस्लाम का परसेप्शन जो इन तमाम मामलात पे है उसको देखेंगे। सूरत नूर इसका मतलब ही रोशनी है, किसी मुआशरे को अंधेरों से बचाने की बेहतरीन रेमेडी है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में रहने के लिए जो हक दिया है वो उसका हक नहीं था, ये अल्लाह का दिया हुआ हक है। लेकिन जब लोग इस हक को गलत इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि लोग फिर उस चीज़ की खैर से महरूम हो जाते हैं। दो तीन चीज़ें लिख लीजिए, कोड वर्ड्स जो आपको इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का मिजाज समझने में मदद देंगे। पहली चीज़, इस्लाम में नस्ब की बड़ी अहमियत है। इस्लाम ये चाहता है कि हर पैदा होने वाले बच्चे को उसके बाप का पता हो। दूसरी चीज़, इस्लाम इंसान की नफ्सियाती ज़रूरियात का भी उसी तरह ख्याल रखता है जैसे उसकी जिस्मानी ज़रूरियात का। किसी मुआशरे के लिए जो एक चीज़ नासूर साबित होती है वो ज़िना है। ज़िना इल्लीगल ताल्लुक़ को कहते हैं। जब इस ताल्लुक़ की बुनियाद पे बच्चे दुनिया में आते हैं तो वो एक किसी मुआशरे का नॉर्मल शहरी साबित होते हैं, बल्कि सारी ज़िंदगी वो इस किस्म के तल्ख तजुर्बात से गुजरते हैं कि बाद में फिर वही लोग जो हैं किसी भी मुआशरे के जराइम पेशा अफराद में बदलने लगते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रोशन मिजाज बनाया। अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमानों को जो परसेप्शन दिया जा रहा है उनके बारे में, जो चीज़ मीडिया के ज़रिए या लोगों की सोच से दी गई, वो क्या है कि इस्लाम बैकवर्डनेस का नाम है। और ऐसे लगता है कि जो मुसलमान होगा वो ज़रूर ही जाहिल होगा या बैकवर्ड होगा। और ये बात मुस्लिम्स के अंदर ही देख लीजिए कि उन्होंने अपने आप को कितना इस चीज के लिए एक्सपोज किया। किसी जगह आप किसी औरत को बहुत कामयाब औरत साबित करना चाहें, पढ़ी लिखी प्रोग्रेसिव किस्म की खातून, बड़ी कॉन्फिडेंट, तो उसको बिल्कुल एक मॉडर्न औरत के नाम से देखते हैं कि जो इस्लाम की लगाई हुई तमाम पाबंदियों से अपने आप को बेनियाज करें। इसके बरक्स अगर किसी औरत को बहुत मजबूर, दुखी, मार खाई हुई, शौहर की तरफ से सताई हुई औरत साबित करना हो तो उसको बुरके में दिखा देंगे। और ऐसे लगता है कि इस्लाम जो है वो औरतों के ऊपर इस तरह की ज्यादतियां करता है कि जो औरत मुसलमान होगी वो फिर ज़रूर ही उसके अंदर कोई कमी होगी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इस्लाम जाहिलियत के लफ्ज़ के ऑपोजिट लफ्ज़ बोला जाता है। मॉडर्नाइजेशन होना असल में मुस्लिम होना है। इस्लाम में डिक्शनरी में अगर आप देख लें तो इस्लाम से पहले के दौर को जाहिलियत का दौर कहा जाता है। आज दुनिया में दो किस्म की बांट दिखती है, सिविलाइज कंट्रीज और एक अनसिविलाइज कंट्री। तो लिहाजा मुसलमानों का जो ख्याल पेश किया जाता है वो ऐसे लगता है कि ये कौम बहुत ही ज़्यादा पीछे रहने वाली है। हालांकि इसके बरक्स अगर हम वो चीज़ देखें कि जो वो लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न पेश करते हैं उनकी सोसाइटीज में क्या हाल है। उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, तालीम दी, उन्होंने रिसर्चेस की। आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है आज इसी चीज पे हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उन सोसाइटीज के अंदर वो अमन और वो चैन नहीं जो होना चाहिए। आज भी इनके अपनी रिपोर्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें साबित होती हैं कि जिससे ये मालूम होता है कि ये दुनिया की तरक्की करने वाले, चांद पे कमंदे डालने वाले, कितने सैयारों और सितारों को डिस्कवर करने वाले, लेकिन अपने मुल्क में जिस चीज़ से ये महरूम है वो अमन और सुकून है। और वो कौन सा? खानदानी निज़ाम। किसी भी सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो खानदान होता है, फैमिली। ब्रोकन फैमिलीज को देख लीजिए, सिंगल पेरेंट्स को देख लीजिए। और जिस मुआशरे में जिना को जिना नहीं कहा जाता बल्कि उसको लिविंग टुगेदर या बॉय फ्रेंडशिप, गर्ल फ्रेंडशिप के नाम पे जायज़ करार दिया जाता है। कुछ फिगर्स आपके साथ रखूंगी कि वो सोसाइटीज जो आज अपने आप को दुनिया की नज़रों में कामयाब सोसाइटीज करार देती हैं और हम भी उनको बहुत सिविलाइज लोग कहते हैं, उनके अंदर क्या हालात हैं। एक रिपोर्ट है मेरे सामने, शिकागो से एक रिपोर्ट छपी थी 1992 और 93 के दो साल का, जो बिटवीन का एक ईयर था, तो उसके फिगर्स में था कि इस साल 313,600 रेप के केसेस हुए, यानी औरतों को जबरदस्ती पकड़ना। और ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ खुद अपनी खुशी से अगर ऐसा कोई काम कर ले तो वो जुर्म नहीं है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी ये जो फिगर है ये 12 साल से ऊपर के हैं। हर 2 मिनट में किसी औरत को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है और हर 6 में से 1 औरत पे जिंसी हमला हो चुका। अब आप बताइए कि जहाँ की औरतें इस किस्म की होंगी वहाँ क्या सुकून वाले घर होंगे। एक और रिपोर्ट है, एक नेशनल जस्टिस इंस्टीट्यूट है उनका, कि जिसमें वो लोगों को हक दिलवाना चाहते हैं, तो वो उसके बारे में लिखते हैं कि विक्टिम्स जो होते हैं रेप के वो तकरीबन 12 साल से कम उम्र के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, छोटी उम्र के। 92% सगे रिश्तेदारों या करीबी रिश्तेदारों के हाथ रेप होती हैं लड़कियाँ, जिसमें उनके बाप, भाई, चचा, मामू दादा और नाना शामिल हैं। फिर इसी तरह एक इनका ह्यूमैनिटी कॉजेस का एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि भाई बहनों के कमरे अलग कर दें, और उसकी खबर यह है कि अक्सर बहनें अपने भाइयों के हाथ परेशान की जाती हैं। देखा जाए तो आज पूरी दुनिया आपको जिना की लपेट में दिखेगी। शक ये दिया जाता है कि मुस्लिम मुल्कों में चूंकि औरतें बहुत ढकी छुपी रहती हैं, तो मर्द बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर चूंकि अब उनको औरत दिखती नहीं, और जब दिखती है तो फिर वो उसको खराब करते हैं। ये तो समझ नहीं आती कि कहाँ, और खास तौर पर हमारे मुल्कों का अगर नाम लिया जाए तो आपको तो वहाँ ऐसी कोई बात दिखेगी भी नहीं। इसके बरक्स आप देखिए कि वो मुआशरे जहाँ औरत को हर इश्तेहार की जीनत बना दिया, हर एडवर्टाइज की जीनत बना दिया, फिर वहाँ तो मर्दों की जज्बात बिल्कुल ठंडे हो जाने चाहिए, क्योंकि वो तो एक चीज खुलेआम दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि ना सिर्फ ये कि जिना और बदकारी, बल्कि अब उससे आगे बढ़ते हुए बातें, पहले आप जिना की बात सुनते थे, फिर होमोसेक्सुअलिटी की बातें हुई, कुछ साल गुजरे तो फिर उसके बाद लेस्बियंस की बात आपने सुन ली, कि मर्द के मर्द अब तो औरत के ताल्लुक हुए, और अब इस वक्त पीडोफिलिया, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बच्चों को अपनी ख्वाहिश के इस्तेमाल करना, इस वक्त का लेटेस्ट ट्रेंड ये है। और कहते हैं कि थाईलैंड वो मुल्क है कि जहां ये कसरत से होता है, और खास तौर पे नाम लिए बगैर जो दो तीन बड़े मुल्क हैं वहां से सबसे ज्यादा कस्टमर्स इनके पास जाते हैं। टाइम्स मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल आया था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि बकायदा बच्चों को दिखाया जाता है, और किसी का जुमला लिखा हुआ था कि ये नहीं, इससे भी छोटी उम्र का बच्चा चाहिए। हर 45 सेकंड में कोई औरत या बच्ची रेप कर दी जाती है। नतीजा क्या निकला? आपने दिया क्या? इंसानियत को क्या मिला? खुदकुशी, जहनी बीमारियां, बच्चों के अंदर कत्ल की बात आम है, और वही माएं जो अपने ही किसी फेल के जुर्म में एक बच्चे की माँ बनती हैं, वो बेचारी माँ सुबह से लेकर रात तक काम करती है। कहते हैं कि सबसे पहले सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो रोड पे गाड़ियां होती हैं वो सिंगल मदर्स की होती हैं, क्यों? कि वो अपनी जॉब से कुछ अरसा पहले, कुछ टाइम पहले निकलती हैं, अपने बच्चों को पहले वो ड्रॉप करती हैं डे केयर सेंटर्स में, और उसके बाद वो जॉब पे जाती हैं। हुआ क्या कि माँ अकेली रह गई, मर्द तो चला गया अपनी ख्वाहिश पूरी करके, और वो बच्चा जिसको माँ भी पूरी नहीं मिली क्योंकि उसने सारा दिन उसके लिए चीजें जमा करनी है, तो फिर नतीजा क्या कि वो बच्चे भी जब थोड़े से बड़े होते हैं तो माँ को छोड़ जाते हैं। इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत माशरा देता है कि जहाँ सबसे ज्यादा पुरअमन अगर कोई इदारा है तो वो घर हो। हर पैदा होने वाले बच्चे का ये हक बनता है कि उसको उसके बाप का नाम बताओ, उसकी दादी नानी। आप खुद सोचिए, जब आज एक मुस्लिम घरों में बच्चा कोई पैदा होता है तो उससे पहले ही कितनी ज्यादा उसके लिए तैयारियां हो रही होती हैं, और उसके लिए उस माँ से ज्यादा लाड करने वाले दूसरे रिश्ते मौजूद होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जिस बच्चे को उसकी दादी का ही ना पता हो, सिर्फ अपनी ज़ात भी लेके सोच लें, जवान होने पे हमें पता चले कि जिस मर्द को हम आज तक बाप समझ रहे थे वो बाप नहीं है, तो क्या जहनी परेशानी नहीं होगी? इसी वजह से आज सबसे ज्यादा यानी जरायम जो है वो यंग्स में आ रहे हैं। एक जेल की रिपोर्ट थी और उन्होंने लिखा हुआ था जितने भी मुजरिम होते हैं उसमें से अक्सर इलीगल चाइल्ड होते हैं, यानी जिनके बाप यानी नहीं उनको पता होता, तो ज्यादा लोग जुर्म करके वही हमारे पास आते हैं। आज उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से बाप का नाम मिटा दिया गया, क्योंकि पता ही नहीं वो कौन है। कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं कि जहाँ तीन चॉइसेस दी गई कि आप इसमें से किसी एक को टिक करें कि क्या आपके पेरेंट्स मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं। जिस सोसाइटी में इस तरह की एक्सेप्टेंस हो जाए बुराई को, आप जरा सोचिए कि क्या वहाँ चैन हो सकता है, वहाँ सुकून हो सकता है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ऐसी तमाम खराबियों से बचाने के लिए उम्मते मुस्लिमा को एक प्रिवेंटेशन प्लान देते हैं, और वो है कि पहले पूरी सारी तैयारी की गई। आप अभी तक पिछले 17 पारों में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत आल इमरान में, सूरत निसा में, इसी तरह कितने एथिक्स पढ़ चुके। अल्लाह की बात मानो, माँ बाप की मानो, बुराई के करीब ना जाओ, फहाशी के करीब ना जाओ। सूरत बनी इसराइल में आपने इस पे तफसील से बात देखी। तो नतीजा क्या हुआ कि ये सब करने से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया के वो मुल्क जो वाकई उधर इस्लाम किसी ना किसी तरह से नाफिज है, वहाँ ऐसी चीज़ें ना होने के बराबर हैं। इसके बाद अगर कोई बंदा इतनी पाबंदियों के बाद कि जहां इस्लाम ने ये सब कुछ कर दिया कि कोई ऐसा जर्म ना दिखे कि जिसकी वजह से ऐसी कोई बुराई फैले, इसके बाद आप देखिए कि वहां निकाह को आसान किया गया, तलाक का रास्ता खोला गया, फुहश लिटरेचर पे पाबंदी लगाई गई, गाने और वल्गर चीजों को जिंदगी से निकाला गया, इसके बाद अगर कोई फिर गलत काम करे तो एक ऑपरेशन के तौर, जिसको आप कह सकते हैं कि ये आखिरी इलाज है किसी सोसाइटी को जिना के जर्म से दूर रखने का, वो है इस्लाम की सजाएं। सूरत के बिल्कुल आगाज में ही ऐसी सजा का जिक्र आएगा, और अगर इस तमहीद के बगैर एकदम अगर ये आयतें शुरू कर ली जाती तो हो सकता है कि नासमझी से हम में से कोई भी ये कहे कि हाय इस्लाम कितना सालिम है। तो आइए अब सूरत शुरू करते हैं, और अल्लाह ताला ने जो बातें हमारे लिए और इन रहती दुनिया की रहनुमाई के लिए सूरत में रोशनी के तौर पर पेश की है, उनसे फायदा उठाते हुए दिल की गहराइयों से इस चीज को महसूस करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। आज भी इस्लाम ही है जो सबसे ज्यादा रोशनी दुनिया में फैला सकता है। जितना आप इस्लाम से लोगों को काटते जाएंगे, उतनी ही सोसाइटी जो है वो कभी नफ्स के अंधेरों में, कभी ख्वाहिशात के अंधेरों में, और कहीं कुछ और अंधेरे हैं जिसका शिकार होती हैं, और बाज़ दफ़ा लोग फिर अपने ही बनाए हुए कवानीन की वजह से परेशान होते हैं। सूरत नूर जो है ये सन 6 हिजरी में नाजिल हुई। इससे पहले सूरत अल अहज़ाब नाजिल हो चुकी थी, वो 5 हिजरी में हुई थी। हम इसको पहले पढ़ते हैं, वो पीछे है, इसमें भी एक हिकमत है जो वहां जाके आपको इंशाल्लाह मालूम होगी। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नज़लनाहा वफ़रज़नाहा وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये है वो सूरत जो हमने नाजिल फरमाई और मुकर्रर कर दी है, और जिसमें खुली आयतें और अहकाम उतारे ताकि तुम याद रखो। सूरत का आगाज ही देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ है, इतनी शिद्दत है एक एक लफ्ज में। हमने फर्ज किया, हमने नाजिल किया, हमने रोशन निशानियां दी। ये आयतें बड़ी रोशन है क्योंकि ये लोगों को रोशनियों की तरफ ले जाती हैं। ये बात शुरू में क्यों कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसको सुनने के बाद ये सोचें कि ये किसी इंसान के बनाए हुए कवानीन है। इसलिए फरमाया सूरत अनजलनाहा वफरजनाहा वअनजलना फीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये है वो सूरत जो हमने नाजिल फरमाई और मुकर्रर कर दी है, और जिसमें हमने खुली आयतें उतारी ताकि तुम याद रखो। अज़ानियत वज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिदिन मिन्हुमा मियत जल्दा। जिनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। इन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज तरस न आना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान हो, इनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। जानी मर्द बजुज जानिया या मुशरिका औरत के और किसी से निकाह नहीं करता, और जिनाकार औरत भी बजुज जानी या मुशरिक मर्द के और निकाह नहीं करती। ईमान वालों पर यह हराम कर दिया गया। ये थी आयत नंबर 1 से 3। इनका उन्वान है जिना की सजा अगर सख्त है तो उसकी शराइत भी सख्त है। जिना के बारे में इस्लाम का जो हुक्म है वो क्या है कि अगर कोई गैर शादीशुदा जिना करेगा तो उसको 100 कोड़े और बाज हालात में 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाएगा। और अगर कोई शादीशुदा औरत या मर्द दोनों में कोई फर्क नहीं, कोई शादीशुदा अगर ऐसा काम करता है तो फिर उसका हाल क्या होगा कि उसको स्टोनिंग टू डेथ यानी रजम किया जाएगा। सजा का फर्क क्यों है कि एक वो है जिसके पास एक चीज थी ही नहीं, उसका जुर्म निस्बतन हल्का है, लेकिन एक वो शख्स जो अपने घर में अपने जायज यानी अपने जोड़े को छोड़कर दूसरों के साथ गलत काम करता है तो उसने गोया कि एक नेमत की नाकदरी भी की। और ऐसे लोग जो होते हैं ये किसी भी मुआशरे के अंदर गलत जर्म्स फैलाने वाले होते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों की सजा की बात की। अब इस सजा को सुन के एकदम लोग एग्रेसिव हो सकते हैं कि ये क्या बात है और ऐसा क्यों, लेकिन जो चीज इसके बाद है वो क्या है कि ये सब कुछ कब होगा, जब उनके ऊपर गवाहियां पेश की जाएंगी। अगली आयतों को पढ़ेंगे, फिर साथ ही इस टॉपिक के ऊपर इकट्ठी बात करेंगे। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा। जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाएं, फिर 4 गवाह ना पेश कर सकें, तो इन्हें 80 कोड़े लगाओ और कभी भी इनकी गवाही कबूल ना करो, ये फासिक लोग हैं। मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला। ये है आयत नंबर 4 से 5। इसको अनवान लिखिएगा जुबान और शर्मगा के जुर्म में सिर्फ 20 कोड़ों का फर्क क्या है, ये इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे जब ये टॉपिक पूरा होगा। अगली आयतों को भी साथ पढ़ेंगे। वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदा। जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और उनके पास सिवाय अपनी जात के कोई गवाह न हो, तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत ये है कि 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहें कि वो सच्चों में से है, और 5वीं मरतबा कहे कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। और इस औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि यकीनन इसका मर्द झूठ बोलने वालों में से है, और 5वीं दफा कहे कि इस पर अल्लाह का गजब हो अगर इसका खावन सच्चों में से हो। अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता तो तुम पर मुशक्कत उतरती, और अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला बा हिकमत है। ये है आयत नंबर 6 से 10। 6 to 10। इसका उन्वान लिखिए, आंखों देखकर जहर कौन खाए। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लियान का कानून क्या है, अभी इस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे एक टॉपिक जो है वो मुख्तलिफ एंगल से हमारे सामने आया। सारी आयात को सामने रखते हुए आपके सामने कुछ बात रखना चाहूंगी। पहली बात यह है कि जिना की सजा अगर सख्त है तो उसके लिए शराइत भी सख्त है। शर्त क्या है कि जिना की ये सजा कब लगेगी? जब चार गवाह जिना के फेल को बिलफेल होता हुआ देखें। इशारा नहीं, किनाया नहीं, शक नहीं, किसी लड़की को लड़के के साथ देखना नहीं, किसी को उसके साथ गंदी वल्गर हरकत करते देखना नहीं, बल्कि बिलफेल जिना का फेल होता हुआ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लोग अपनी गवाही देंगे कि हमने ये फेल होते देखा, फिर उस पर यह सजा होगी। इस्लाम तो चाहता है कि सजा लगे ही ना, और ये कब होगा? जब ये अमल सरेआम खुलेआम महफिलों में होने लगेगा, पार्टीज में होने लगेगा। अब ये बात तो एक हो गई, किसी एक ने देखा, तीन नहीं थे, क्या करे, जुबान को सीले। दो ने देख लिया, तीसरा पास मौजूद नहीं है देखने वाला, क्या करे, जुबान को सीले। तीन ने देखा, चौथा बंदा नहीं, जुबान को सीले। कोई औरत देखे किसी को फेल करते हुए, चुप करे, उसको बोलने की इजाजत ही नहीं। जब तक चार मर्द इसकी गवाही ना दें, अगर एक या दो या तीन में से किसी ने जाके कहना किसको है, ये गवाही देनी का है, लोगों में बैठ के, फोन पे, अपनी आपस की पर्सनल टॉक्स पे, गॉसिप की शक्ल में, कतन नहीं। इस्लाम का ये गंदा मिजाज नहीं है कि हम गॉसिप करके ऐसी चीजों को फैलाएं। ये गवाही कब देनी है? जब उस मुल्क में इस्लाम का निजाम होगा। और किसको देनी है? जाके हाकिमे वक्त को देनी है, काजी के पास जाके बात करनी है। अगर चार लोग इसकी गवाही देंगे उसके बाद सजा पे अमल होगा, और अगर कोई एक शख्स जाके काजी के पास ये बात कर आता है ना, तो उसको भी रोक लिया जाएगा, उसके लिए भी एक जेल होगी। और उसे कहा जाएगा तीन और लोग हैं तुम्हारे पास, कहेगा नहीं, तो कहा जाएगा अब तुम 80 कोड़े खाओ। इसको कज़फ की सजा कहते हैं, बोहतान की सजा। जरा सोचिएगा, जब हम इस्लाम के असल रुख को देखते ही नहीं है ना, सिर्फ लोगों से सुन के बातें करते हैं। हमारे यहाँ इतना मारूफ है जी, जिना की सजा 100 कोड़े, कितना जुल्म है, ये कब है? आप इस्लाम चाहते हैं ऐसी बातें मुआशरे में आई ना, खुले ही ना। आप कहते हैं कैसे सब्र करें, हमने देखा है वो किया, सब्र कीजिए। मालिक यौमिद्दीन, जिसको आज यहाँ सजा नहीं मिलेगी उसको वहां मिलेगी। क्या हर जुर्म की सजा आज मिल जाती है? जिसने किसी के ऊपर ऐसी कोई बात की जिस पे वो तीन और गवाह पेश ना कर सके, तो उसके ऊपर 80 कोड़े हैं। ये है वो फर्क जो आपको बताया कि जुबान का गुनाह और शर्मगाह का गुनाह सिर्फ 20 कोड़ों का फर्क है। यहाँ देखिए इस्लाम किसकी हिफाजत ज्यादा चाहता है? जुबान की हिफाजत। और ये जुबानें हमारी कैसे चलती हैं? कोई खुदा न खास्ता जिना का फेल करे तो हम कहते हैं बड़ा गुनाहगार है, और जब हमारी जुबानें जिना करती हैं या हमारी जुबानों से वल्गर बातें या दूसरों की इज्जतों के ऊपर हम उछालते हैं, फुलां की बेटी तुम्हें पता है, फुलां का बेटा तुम्हें पता है, तुम्हें पता है उसका शौहर, खुदा के लिए इन बातों को हम अपनी जुबानों पर लाने से पहले अपने आप को बंद कर लें। अब एक ही सूरत पीछे रहती है कि ठीक है भाई, किसी और की बात थी हमारी बला से, उसको छोड़ दीजिए। अब कोई मर्द अपनी बीवी को देख लेता है, अब क्या किया जाए? ऐसा वाक्य हुआ जिस पे ये आयतें, आखिरी आयतें हमने पढ़ी हैं। अब एक मर्द देखे वो क्या करे? वो बीवी को घर में रखे, ये तो उसके बेगैरत होने की अलामत है। अदालत के अंदर जाके बात करता है तो उसको 80 कोड़े खाने पड़ेंगे। अब इसके लिए अल्लाह ताला का इंसाफ देखिए। और मैं जितना इस्लामिक सजाओं को पढ़ते हुए महसूस करती हूँ ना, कि अल्लाह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला जो कहते हैं ना कि मैं बंदे की शाह रख के भी करीब हूँ, तो मुझे इसका यकीन और बढ़ने लगता है। ये वो चीजें जो इंसान के अंदर तक कोई जा ही नहीं सकता, जिसको अल्लाह ताला ने महसूस किया। शौहर अब देख ले फिर क्या करे, और सेम चीज है, बीवी शौहर को देख ले अब क्या करे, वो अदालत में जाएगी जो भी उसकी वक्त की बात है, फिर वहां वो चार दफा कसम खाएगी कि मैंने अपने शौहर को इस हालत में देखा या मैंने अपनी बीवी को देखा। फिर पांचवीं दफा भी ये कहेगी या करेगा, जो भी इसका तरीका, लीगल इश्यूज पे तो हम बात नहीं कर रहे इस वक्त, यानी खुलासा क्या है कि अदालत में जाके वो कसमें खाएंगे कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरे पे अल्लाह की लानत हो। अब मर्द हट जाएगा, उसी कटहरे में फिर उस औरत को खड़ा किया जाएगा। फिर वो कहेगी मैं कसम खाती हूँ मैं सच्ची हूँ और ये झूठ बोल रहा है, मैं कसम खाती हूँ ये मैं सच्ची हूँ ये झूठ बोल रहा है। और पांचवी दफा जब ये कर देगी कि मेरे पे भी लानत हो, तो इसके जरिए से फिर शौहर और बीवी जुदा हो जाएंगे। ये तलाक की किस्म होती है, इसको लियान कहते हैं। अब वो साथ कैसे रहे? और वो फिर औरत अलग रहेगी, मर्द अलग रहेगा। लेकिन आप यहाँ देखिए कि क्या स्कैंडल्स की इस्लाम में इजाजत है? जो इस्लाम किसी दूसरे की इज्जत की इतनी हिफाजत करे, क्या वो सियासी रहनुमाओं के स्कैंडल्स पसंद करेगा? कहीं आप देखिए कि गुलुकारों के, कहीं फनकारों के, कहीं आर्टिस्ट के स्कैंडल्स का जो तस्करा होता है, और जो हमारे यहाँ छपने वाली अखबारें हैं जिसमें बुराइयों की बातें यूं इश्तिहार बना के पेश की जाती है, ना तो सजा दी जा रही है, ना उसका कोई तरीका कार है। और आप कोई अखबार खोल के देख लें, दो चार खबरें तो जरूरी होती हैं, फलां देहात में ये हुआ, फलां ने उसकी इज्जत पे हमला किया, फलां ने ये किया, और दिस एंड दैट, और उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ताला इंसानों को वो काम बताते हैं कि जो काबिल अमल भी हों और जिसके ऊपर अमल करने से किसी सोसाइटी के अंदर वाकई खैर आने लगे। अब एक ऐसा ही वाक्य अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में हुआ जिसमें ये सारी ही बातें आ सकती थी जिनका अभी तذکرہ किया, जिना, कज़ब, इल्ज़ाम, और तीसरी चीज शौहर और बीवी के लियान वाली कैफियत। अब इस पूरे वाक्य को सुन के फिर इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इन्नल्लज़ीना जाउ बिलिफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रल लकुम, जो लोग ये बहुत बड़ा बहुतान बांध लाए हैं ये भी तुम ही में से एक गिरोह है, तुम इसे अपने लिए बुरा न समझो बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, इनमें से हर एक शख्स पर इतना गुनाह है जितना इसने कमाया है, और इनमें से जिसने इसके बहुत बड़े हिस्से को सर अंजाम दिया है उसके लिए अजाब भी बहुत बड़ा है। इसे सुनते ही मोमिन मर्दों और औरतों ने अपने हक में नेक गुमानी क्यों ना की, और क्यों ना कह दिया कि ये तो खुल्लम खुल्ला सरीख बहतान है, वो इस पर चार गवाह क्यों ना लाए, और जब गवाह नहीं लाए तो ये बहतान बाज लोग यकीनन अल्लाह के नजदीक महज झूठे हैं। अगर अल्लाह ताला का फजलो करम तुम पर दुनिया और आखिरत में ना होता तो यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे इस बारे में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब पहुंचता, जबकि तुम इसे अपनी जुबानों से नकल दर नकल करने लगे और अपने मुंह से वो बात निकालने लगे जिसकी तुम्हें बिल्कुल खबर ना थी, गो तुम इसे हल्की बात समझते रहे लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक वो बहुत बड़ी बात थी। तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं, या अल्लाह तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बुख्तान है और तोहमत है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है फिर कभी ऐसा काम न करना अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान फरमा रहा है और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बुना अन तशी अल्फाखिशतु फिल्लज़ीना आमनू, जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरजूमंद हैं इनके लिए दुनिया और आखरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती, और ये भी कि अल्लाह ताला बड़ी शफकत रखने वाला मेहरबान है, तो तुम पर अजाब उतर आता। ऐ ईमान वालो, शैतान के कदम ब कदम न चलो, जो शख्स शैतानी कदमों की पैरवी करे तो वो बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म करेगा, और अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता तो तुम में से कोई भी कभी पाक साफ ना होता, लेकिन अल्लाह जिसे पाक करना चाहे कर देता है और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और जानने वाला है। तुम में से जो बुजुर्गी और कुशादगी वाले हैं इनको अपने खराबतदारों और मिस्कीनों और मुहाजिरों को फी सबीलिल्लाह देने से कसम न खानी चाहिए बल्कि माफ कर देना और दरगुजर कर देना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह ने तुम्हारे कसूर को माफ फरमा दिया? अल्लाह ताला कसूरों को माफ फरमाने वाला है। जो लोग पाक दामन भोली भाली बाईमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं वो दुनिया और आखरत में मलून है और उनके लिए बड़ा भारी अजाब है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम वाईदीहिम वारजुलुहुम बिमा कानू यामलून, जबकि इनके मुकाबले में इनकी जुबानें और इनके हाथ पांव इनके आमाल की गवाही देंगे। इस दिन अल्लाह ताला इन्हें पूरा पूरा बदला हक और इंसाफ के साथ देगा। वो जान लेंगे कि अल्लाह ताला ही हक है और वही जाहिर करने वाला है। अलखबीसातु लिलखबीसीन वल्खबीसून लिलखबीसात, खबीस मर्द यानी नापाक औरतें नापाक मर्दों के लायक हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं। ऐसे पाक लोगों के मुतल्लिक जो कुछ गलत बातें ये बोहतान बाज कर रहे हैं वो इनसे बिल्कुल बरी हैं, और इनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। ये थी आयत नंबर 11 से 26, 11 to 26। इसका उन्वान लिखिएगा सिद्दीक के घराने से हमेशा ही उम्मत को खैर मिली। ये एक जुमला था जो सहाबे कराम ने अबू बकर सिद्दीक के बारे में थोड़े से अल्फाज के फर्क से बोला था कि अबू बकर सिद्दीक के घराने से तो हमेशा खैर पहुंची। इन पूरी आयात के पीछे एक वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे। आपकी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला उस मौके पर मौजूद थी। गजवा बनु मुस्तलक या मुरैसी दोनों नाम है इस जंग के। आपकी आदत मुबारक थी कि जब आपने कहीं भी जाना होता तो कुरा डालते और जिस बीवी का नाम आता उसको साथ ले जाते। हर बात में सबक है। हैं कि इंसाफ कितना था आपके पास। नतीजा क्या हुआ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पे वापस सब लोग आ रहे थे, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कजाए हाजत के लिए अपने हौदज, हौदज जैसी है जैसे डोली होती है या पालकी, उस तरह की एक चीज होती थी। उस दौर में औरतें बड़ी दुबली पतली होती थी, इतना वजन नहीं था कि लोगों को उनका एहसास होता। तो इनका जो हौदज था उठाने वालों ने उठा लिया, हालांकि उसमें नहीं थी, ये अपनी एक हाजत के लिए गई थी। काफिला कूच कर गया। थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा वहां वापस आई, देखा काफिला चला गया। अक्लमंदी का सबूत दिया, और आप भी और मैं भी अमल इनमें साथ साथ पिक करते जा सकते हैं कि वो वहां से इधर उधर नहीं हुई, क्योंकि जब इंसान कभी किसी से बिछड़े तो वहीं खड़ा रहे, क्योंकि हाल क्या होता है कि आप उधर घूम रहे हैं तो वो उधर जाते हैं, वो उधर आते हैं तो आप उधर होते हैं। वहीं इस ख्याल से लेट गई कि जब वहां जाके ये लोग मुझे नहीं पाएंगे, मुझे देखने के लिए लेने के लिए आएंगे तो इधर ही होंगे, अपने मुंह पे कपड़ा लिया, चादर ली और वहीं आराम करने लगी। थोड़ी देर हुई तो इनको आवाज सुनाई दी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज सुन के जब इन्होंने मुंह से कपड़ा हटाया तो वो सहाबी थे सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह अन्हो, बदरी सहाबी थे, पता नहीं बदरी थे कि नहीं, लेकिन बहुत नेक सहाबी थे। और इनकी ड्यूटी क्या थी कि जब कहीं से कोई काफिला कूच कर जाता तो ये सबसे आखिर में वहां से उठते, ये भी एक अमल की बात है, ताकि कोई बच्चा, कोई चीज, कोई गिरी पड़ी चीज है उसको उठा के ले आए। जब इन्होंने वहां एक शख्स को लेटे हुए देखा तो इन्ना लिल्लाह पढ़ा, और इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी गम पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, उस वक्त पढ़ने की चीज है। इन्होंने जब ये लफ्ज बोला, हजरत आयशा ने मुंह से कपड़ा उठाया, इन्होंने जब हजरत आयशा को देखा, और हजरत आयशा खुद कहती हैं कि पर्दे की आयतों के उतरने से पहले ये मुझे देख चुके थे, देख के आपको उन्होंने कहा अल्लाह के नबी का हरम, यानी आपकी बीवी इधर रह गई, बस ये एक जुमला था। उसके बाद हजरत सुफान ने अपना ऊंट हजरत आयशा के करीब किया, ये वहां से आपके ऊंट पे बैठी और वो आगे उसकी मुहार उठा पैदल चलने लगे। ये दिन का वाकया था, सुबह सुबह काफिला कूच किया था, चंद घंटे के बाद ये जो थे उस काफिले को मिल गए जहां पे दूसरे मुसलमान मौजूद थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को सफवान बिन मुअत्तल के साथ आता देखकर, वो लोग जिनके दिलों में निफाक होता है, जो हमेशा ही इस्लाम के बारे में कोई ना कोई बात उछालना चाहते हैं, और इस्लाम के बारे में कब उछाल पाते हैं, जब इस्लाम फैलाने वालों पे उछाल सके, जो आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार खुशी के लिए इतने तेज हैं, तो सोचिए कि उस दौर में जब के अल्लाह के नबी मौजूद थे उनको उस वक्त कितना नहीं होगा। उन्हीं का एक चीला था अब्दुल्ला बिन उबई, उसने दूर से देखा तो कहने लगा नऊसु बिल्ला, ये अल्लाह के नबी की बीवी बच के नहीं आई, और बहाना कर दिया कि ये जान के रही और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लग गई सुफवान के साथ। काफिला कूच किया, हजरत आयशा घर में आई, अल्लाह का करना है सवा के घर में आने के बाद इनको बुखार हो गया, कहती हैं मैं तो घर में ही पड़ी रही। एक दिन उम्मे मस्तो के साथ कजाए हाजत के लिए निकली, जो इनकी रिश्ते में खाला भी थी, और उन्हीं के बेटे मस्तो जो थे वो गरीब भी थे, मिस्कीन भी थे, और अबू बकर सिद्दीक उनकी किफालत भी करते थे। उस सहाबी की माँ के साथ ये कजाए हाजत को गई, कहती हैं कि वहां जब गई तो उनको ठोकर लगी, पत्थर लगा, हाथ लगा, तो एकदम उसके मुंह से निकला कि मस्तो तेरा बुरा हो, जैसे हमारे यहाँ जैसे एक हल्की सी बात जुबान पे हम ले आते हैं। कहती कि मैंने उनके मुंह से जब उनके बेटे के बारे में ये बददुआया कलमा सुना तो मैंने कहा कि उम्मे मस्तो, आप अपने बेटे के बारे में ऐसे क्यों कह रही हैं, वो तो इतना नेक है। कहने लगी मैं उसको बुरा क्यों ना कहूँ, तेरे ऊपर तोहमत लगाने में तो वो सबसे आगे है। कहने लगी कौन सी तोहमत, इतनी भोली थी, इनको कुछ पता नहीं कि बाहर इनके खिलाफ क्या तूफान उठे हुए हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन भोला भाला होता है, क्योंकि अलमरु यकय्यसु अला नफसी, आदमी जैसा खुद होता है ना वैसे ही दूसरों को सोचता है, जो खुद किसी पे तोहमत नहीं लगाता, खुद किसी के साथ ज्यादती नहीं करता ना, वो ये भी नहीं सोच सकता कि कोई मुझ पर भी ज्यादती करता है। कहने लगी मैं मुझे तो नहीं पता मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं। कि अच्छा, उम्मे मस्तों ने सारी कहानी सुना के घर घर ये बातें, और बाहर एक कितना सख्त तूफान था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो दिन इंतहाई तकलीफ के दिन थे। लोगों ने आपको मशवरे देने शुरू कर दिए कि आयशा को तलाक दे दें, आपको अल्लाह ताला और बीवियां दे देगा। और एक नबी की बीवी पे इल्ज़ाम लगाना असल में इस्लाम पे इल्ज़ाम था, क्योंकि इस्लाम का एक असूल हमने आखिर में पढ़ लिया कि अत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन, मर्द पाकीज़ा होगा तो बीवी भी पाकीज़ा होगी, मर्द गंदा होगा तो औरत भी गंदी होगी। इसीलिए शुरू में ही कह दिया कि जो मुशरिक, जो जानी है, या तो वो मुशरिका से निकाह करेगा या जानिया से करेगा, ये पाक लोगों के काबिल ही नहीं है, ऐसे निकाह होते ही नहीं है कि एक तरफ मर्द एक लड़की तो पाकीज़ा और लड़का गंदे अखलाक का और किरदार का, और आप उन दोनों का निकाह कर दें, ये निकाह निकाह ही नहीं है। बहरहाल कहती हैं ये बात सुन के तो मेरे ऊपर गम के पहाड़ टूटे, और कहती हैं अब मुझे समझ में आई कि अल्लाह के नबी सल्लम मुझसे खिंचे खिंचे क्यों हैं। कहती हैं मैंने उस जंग के बाद अल्लाह के नबी के अंदर वो गर्मी नहीं देखी जो पहले देखती थी, बीमारी की सूरत में जो अल्लाह के नबी सल्लम मेरी तीमारदारी किया करते थे, इस बीमारी में मैंने वो नहीं महसूस किया। अब तो कहने लगी बस मेरा रोना छूट गया। घर आई, मैंने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कुछ दिन मैके रहा हूँ। कहने लगी मेरी खिलाफ़े तवक्को अल्लाह के नबी ने फ़ौरन कहा हाँ चली जाओ। कहती इस पे भी मुझे गम आया कि अल्लाह के नबी तो मेरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि मुझे मेरे माँ बाप के घर भी अकेले नहीं जाने देते थे, और इस पे भी रोई। और बीवी की आदत होती है कि जब शौहर खुद कह दे चली जाओ तो बीवी रोने लगेगी, ये अलग बात है कि वैसे जाने का दिल जाए। कहती मैं गम वाला दिल लेके अपने माँ बाप के घर आई। कहती माँ भी कुरान पढ़ रही थी और बाप भी आजुर्दा थे। फिर उस वक्त माँ बाप और कुछ ऐसे मामलात हुए जो डिटेल का इस वक्त मौका नहीं है, लेकिन कहने लगी कि मैं आपको यही कहूँगी कि अगर इस वक्त मैं सच बोलूँगी तो आप नहीं मानेंगे, और मैं अगर झूठ बोलूँगी ना तो आप मान जाएंगे, क्योंकि लोगों से बातें सुन सुन के अब आपको झूठ सच लगने लगा है। तो मैं तो वही कहूँगी जो यूसुफ के बाप ने कहा था, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून। मैं तो सब्र जमील ही करूँगी, और जो ये मेरे खिलाफ़ घड़ रहे हैं ना इस पे अल्लाह मेरी मदद करेगा। एक मौके पर अल्लाह के नबी भी आए, कहा आयशा अगर तुमसे कोई जुर्म हो गया है माफ़ी मांग लो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। कहती इससे तो मेरा जब्त टूट गया कि अल्लाह के नबी आप भी ऐसा सोचेंगे। बहरहाल कुछ दिन ये माँ बाप के घर में रहीं, अल्लाह के नबी आते खामोशी से बैठते चले जाते, ना इल्तफात था ना मोहब्बत थी। और इसी दौरान फिर एक दिन अल्लाह के नबी सल्लम वहीं थे सिद्दीक के घर में कि आपके ऊपर वही की कैफियत तारी हुई। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं पहचान गई कि अल्लाह के नबी के पास इस वक्त वही आ रही है। मेरे दिल में खुशी पैदा हुई कि देखना अल्लाह अपने नबी को मेरे बारे में बता देगा और आपका दिल साफ हो जाएगा। लेकिन कहती हैं कि ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला आसमान से मेरी बारात में ये 10 आयतें नाजिल कर देगा जो रहती दुनिया तक आयशा की बेगुनाही को साबित करेंगी। और हकीकत ये है कि जिस बंदे पे अल्लाह के रास्ते में या जिसको बेगुनाह तकलीफ दी जाती है ना, अल्लाह उसको दलील के जवाब में दुनिया में ज़रूर साबित करता है। कहती हैं कि वही की कैफियत ख़त्म हुई, अल्लाह के नबी के माथे पे पसीना था और आपका चेहरा ऐसे चमकने लगा जैसे 14वीं का चांद बादलों में से झलकने लगे। इस तराब दूर हो गया, कुलक दूर हो गया, और अल्लाह के नबी कहने लगे आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी बेगुनाही में कुरान पाक में आयतें उतार दी। कहती है मेरे माँ बाप ने खुशी में कहा आयशा उठो अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा मैं इनका नहीं करूँगी, मैं उस रब का करूँगी जिसने इनको मेरी बेगुनाही बता दी। कितनी औरतों पे आज भी इल्ज़ाम लगते होंगे, लेकिन आयशा के इल्ज़ाम ने इंसानियत को एक कानून दे दिया। अबू बकर सिद्दीक को जब पता चला कि अच्छा, और वो मस्तो जो रिश्तेदार था, टुकड़ों पे पला हुआ कह लें अपनी ज़ुबान में, जब बाप को पता चला कि इसने मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाया, 3 मुखलिस लोग, नाम लेने की ज़रूरत नहीं इस वक्त, वो भी मुनाफिकों के इस प्रोपेगंडे में शामिल हो गए थे। उनमें अल्लाह के नबी की एक बीवी की एक बहन भी थी। हज़रत अबू बकर ने कसम खा ली कि मस्तो आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। चोट पड़ी ना, बाप कितने सेंसिटिव होते हैं बेटियों के मामले में। अल्लाह ताला ने कहा सिद्दीक ये कैसे हो सकता है, आम लोग तो ये कसम खाएं से खाएं, लेकिन से मुकामे सिद्दीकियत पे पहुंचने वालों का ये मेयार नहीं होता कि लोग बुरा करें तो तुम उनके साथ बुरा करो। वला यात लिल उलुल फतली मिनकुम, कुरान पाक की आयत उतर गई कि जो ऐसी कसम खा चुके हैं तो उनको ऐसी नहीं खानी चाहिए। तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? तो अबू बकर सिद्दीक ने इन आयतों को सुन के फिर कहा ए अल्लाह मैं पसंद करता हूँ कि तू मुझे माफ कर, और ना सिर्फ कि अपनी कसम तोड़ी उसका कफारा दिया, बल्कि मस्तों का जो खर्चा पानी था या जो उनका वजीफा था वो पहले से दुगना कर दिया। जिनको आखिरत प्यारी होती है ना, वो दुनिया में अपनी जात का दिफा नहीं करते रहते, सारी जिंदगी अपने आप को इन चीजों में नहीं रखते कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और क्या सुनते हैं। इस वाक्य को बुनियाद बना के अल्लाह ताला ने मुस्लिम सोसाइटी को बड़े खूबसूरत कानून दिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम ऐसे जुबान दर जुबान बातें कर रहे थे, आयशा के बारे में बातें कर रहे थे, इतनी पाक औरत के लिए बातें करते थे, तुमने कभी ये सोचा नहीं कि तुम ये कर सकते हो? किसी औरत ने ये बात की तो दूसरे ने उनको कहा कि तुम बताओ कि क्या तुम ये काम कर सकती हो? कहेंगे मैं तो कभी नहीं ये कर सकती कि मैं ऐसा काम करूं। तो कहा ये बताओ कि क्या फिर अल्लाह के नबी की बीवी ये काम कर सकती है? यानी गॉसिप और जो सोसाइटी के अंदर स्कैंडलिज्म है उसका खात्मा कर दिया गया इन आयात में कि कोई ऐसी बात को सुन के आगे से आगे ना फैलाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी इंसान के जहन्नमी होने के लिए ये बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे। और यहाँ आप देखिए एक आयत हाईलाइट करेंगे, आयत नंबर 19, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल्फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा। इसको हाईलाइट कर लीजिए। तशी अल फाहिशा का लफ्ज़ इधर आया है, और फाहिशा की इशात से मुराद क्या है कि ऐसी बेकार बातों को फैला दिया जाए कि जिससे सुकून और चैन खत्म हो। आज के दौर का मीडिया इस काम के अंदर पेश पेश है। ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से बुराई को इतना खूबसूरत करके दिखा दिया, ग्लैमराइज करके दिखा दिया कि हीरो और हीरोइन के तसव्वुर के बगैर तो कोई मूवी नहीं बनती। आप देखिए कि नॉवल का किरदार बुनियादी तौर पे कौन आता है, हीरो और हीरोइन। ड्रामा है उसका मेन किरदार कौन है, हीरो और हीरोइन। कहाँ भी देख लें, क्या इस्लाम एक औरत और मर्द का इस तरह का ताल्लुक पसंद करता है? कभी किसी शौहर और बीवी को इश्क और मोहब्बत करते हुए नहीं दिखाएंगे, गैरों को दिखाएंगे। फिर औरत को प्रमोट किया गया, फिर औरत को पेश कर दिया गया। लेकिन इन सारी चीजों को अगर हम काबू में रखना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार यही हो सकता है कि ये ट्रैश है, इसको ढक दें। एक शोशा पेश किया जाता है और वो क्या कहते हैं, लोग गलत नाम ले लेके बोलते हैं, कहते हैं चलें भाई वेस्ट वाले अगर गलत करते हैं तो क्या हुआ। यानी हमारा हाल क्या कि हम हर चीज़ में वेस्ट को जस्टिफाई करने लगते हैं, जैसे लगता है दिल जुड़े हुए हैं ना। यानी अजिल्लत इन अलल मोमिनीन की बजाय अजिल्लत इन अलल काफिरीन वाली कैफियत होती है। डिफेंड करने लगते हैं कि देखें वो चले गलत काम करते हैं तो सरेआम तो करते हैं ना, और अपने मुसलमान मुल्कों में आपको पता है क्या नहीं हो रहा, और आपको क्या पता है सऊदी अरब में क्या हो रहा है, और आपको क्या पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक शोशा पेश किया जाता है। हाँ जी, बाहर से तो अबाये पहनने होते हैं, आपको क्या पता उनके घरों के क्या मामले हैं। यहाँ मैं एक कानून बताना चाहूंगी छोटी सी मिसाल के साथ। एक शख्स है, कहीं थोड़ा सा ट्रैश देखे, अब उस ट्रैश को वहां से पकड़े, उसके थैले भरे और घर घर में फैला दे, ये कहे कि तुम कितने मुनाफिक लोग हो कि ट्रैश को ट्रैश कैन के अंदर डालते हो, इसको तो खुलना चाहिए, तो निफाक है कि इस गंदगी को तुमने छुपा दिया, बल्कि उसको हर घर में रख दो। नतीजा क्या होगा, चारों तरफ बदबू होगी ना। और अगर कोई समझदार इंसान है वो सारे ट्रैश को पकड़ के किसी जगह से ले और डंप कर दे, कौन सा बेहतर तरीका है, पहला कि दूसरा? यकीनन दूसरा। इस्लाम कहता है बुराई है तो घर के अंदर है, कुछ तो हया मौजूद है ना, कुछ तो शर्म मौजूद है ना। कहीं गटर खुला हो और उसका ढक्कन आप ऊपर से उठा देंगे, ये क्या निफाक है, अंदर गंदगी है तो दिखनी चाहिए, इस पानी को बाहर पिला दें। नहीं, ढक दो, ढक्कन हम सब चीजों पे लगाते हैं। इसी तरह जहाँ खुलेआम बुराई होती है तो इस चीज की दलील है कि उनको बुराई की अब शर्म भी नहीं रही, अब तो हया खत्म हुई, अब तो उनको भी वो चीजें देखनी पड़ेगी जो बचना चाहते हैं। वो लोग जो अपनी इस मजबूरी के लिए सफर के लिए निकलेंगे उनको वो गंदी चीजें देखनी पड़ेंगी, वो लोग जिनको अपनी मजबूरी के लिए ग्रोसरी करने जाना पड़ेगा उनको गंदे मैगजीन देखने पड़ेंगे। हर जगह आप देखिए कि औरत को इस तरह बरहना कर दिया, ये तो वो बात हो गई कि ऐसे इश्तियाल पेश कर दिए गए कि जिसकी वजह से बुराई और आम होने लगे। तो लिहाजा बुराई छुपके करना और बुराई खुल के करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, जैसे ट्रैश को डंप करना या उसको खोल के पेश करना। इस्लाम ऐसी तमाम चीजों का चर्चा भी पसंद नहीं करता।